पृष्ठ संख्या 23। 3 जायसी और सूफी संप्रदाय। कवि और मनुष्य के रूप में जायसी की तलाश करने का मूल उद्देश्य यह रहा है कि जायसी को सूफी मानने की जो बद्ध मूल धारणा हिंदी शोध और आलोचना में बन गई है उसकी छानबीन की जाए। हमने देखा कि जायसी ने खुद अपने बारे में जो संकेत दिए हैं वे इस धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यह धारणा हिंदी साहित्य में इतनी गहरी प्रविष्ट हो गई है और उसे इतना विद्वानों और जायसी विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है कि तसव्वुफ से अलग हटकर जायसी पर विचार करना असंभव हो गया है। इस गलतफहमी के कारण न सिर्फ जायसी का वास्तविक कवि व्यक्तित्व, उनकी रचनात्मक प्रतिभा और एक हद तक उनकी अद्वितीय मौलिकता पर पर्दा पड़ गया है, बल्कि वे दोहरे अन्याय और उपेक्षा के शिकार भी हुए हैं। विडंबना यह है कि 16वीं से 19वीं शताब्दी तक, जब दिल्ली और मुगल साम्राज्य में तसव्वुफ और विभिन्न सूफी संप्रदायों का बोलबाला था, तब जायसी की उपेक्षा इस कारण हुई कि वे किसी सूफी या किसी अन्य संप्रदाय में प्रतिबद्ध नहीं दिखते थे, और 20वीं शताब्दी में जब तसव्वुफ का महात्म्य नगण्य होने लगा तब जायसी सूफी घोषित कर दिए गए और धीरे धीरे केवल भाषा संबंधी शोधकर्ताओं, जायसी विशेषज्ञों और प्राचीन संप्रदायों में रमने वाले अध्यापकों के लिए पुराने दस्तावेज की तरह रह गए। जीवित और श्रेष्ठ कवि के नाते, ऐसे कवि के नाते जो आज इस समय की संवेदनाओं के बीच हमसे कुछ कहने की क्षमता रखता है, जायसी फिर अपरिचित हो गए। यही दोहरा अन्याय है। अतः यह जरूरी है कि हम उनके सूफी होने की धारणा पर सतर्क होकर उधेड़ बुन करें, ताकि बहुत सा भ्रम जो अनायास इकट्ठा हो गया है उसकी समीक्षा हो सके। तसव्वुफ से जायसी को कई तरह से जोड़ा गया है। कहा गया है कि वे सूफी हैं। एक कदम आगे बढ़कर कहा गया कि वे चिश्तिया या महदवी संप्रदाय में दीक्षित हैं। इतने से संतोष नहीं हुआ तो यह भी कहा गया कि वे स्वयं सूफी साधु थे। इससे भी आगे वे सिद्ध महात्मा थे और चमत्कार करते थे। गनीमत है कि उनके नाम पर मलिकिया या मुहम्मदिया अखाड़ा अब तक नहीं, पृष्ठ संख्या 24, चला है। सामान्यतः इस वितंडावाद से हमारा सरोकार न होता, लेकिन इस धारणाओं का असर जायसी और उनके पद्मावत के समझने और आस्वादन की प्रक्रिया पर पड़ा है और पड़ता है। इसलिए साहित्य और जायसी साहित्य के तल्लीन पाठक के लिए इस वितंडावाद से उलझना जरूरी है। तसव्वुफ बल्कि सूफी संप्रदाय के चौखटे में जायसी को कसने की शुरुआत ग्रियर्सन ने की। ग्रियर्सन ने जायसी को मुस्लिम एसेटिक अर्थात मुसलमान सन्यासी कहा है और उनकी सांप्रदायिक लोकप्रियता का बखान किया है। ग्रियर्सन के कुछ वक्तव्य इस प्रकार हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ द पद्मावती इज ड्यू मेनली टू द हैप्पी एक्सीडेंट ऑफ मलिक मोहम्मद रेप्यूटेशन, ऑल्दो प्रोफाउंडली अफेक्टेड बाय द टीचिंग ऑफ कबीर एंड फैमिलियरली एक्वाइंटेड विथ हिंदू लोर एंड with the Hindu yoga philosophy, he was from the first reserved as a saint by his Muhammadan co-religionist. His work is a valuable witness to the actual condition of the vernacular language of northern India in the 16th century. ग्रियर्सन का यह कथन कि जायसी का समादर आरंभ से ही उनके अपने सहधर्मियों से सिद्ध फकीर की भांति हो गया था, केवल जायस में सुनी हुई दंत कथाओं पर आधारित है, जैसा हम पहले कह आए हैं। तरह तरह के साधुओं, संतों, सिद्धों के उल्लेख हिंदू मुसलमान दोनों समुदायों में यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं, लेकिन बहुत खोजने पर जायसी संबंधी उल्लेख, वास्तविक या चमत्कारी, अभी तक किसी तस्करे या इतिहास में नहीं मिला है। ध्यान में रखने की बात है कि मौलाना दाऊद और उनके चंदायन का उल्लेख मुत्तखाबुल तवारीख का लेखक बदायूनी करता है। उल्लेख ही नहीं, चंदायन के विषय में यह भी कहता है कि यह पुस्तक इतनी लोक प्रसिद्ध है कि यह बदायूनी की प्रशंसा की मोहताज नहीं है। दाऊद जायसी से कुछ 150 साल पहले और बदायूनी से प्राय 200 वर्ष पहले हुए। चंदायन में जगह जगह काव्य दीप्ति है, परंतु जायसी के पद्मावत की तुलना में वह कहीं नहीं ठहरता। फिर भी बदायूनी ऐसा बोलता है जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का उसने नाम न सुना हो। बदायूनी ने कालपी वाले शेख बुरहान का भी तस्किरा लिखा है। माना गया है कि शेख बुरहान वही हैं जिनको अपने गुरु सूची में जायसी ने अगुआ भयो शेख बुरहानु कहकर प्रणाम किया है। शेख बुरहान का उल्लेख आईने अकबरी में उन संतों में है जिन्हें आभ्यंतरिक ज्ञान पर अधिकार प्राप्त, पृष्ठ संख्या 25 था। बदायूनी ने यह भी बताना जरूरी समझा है कि शेख बुरहान हिंदी में कविता भी लिखते थे। इसी प्रकार मधुमालती के लेखक मंझन हैं। वे जायसी से एक पीढ़ी बाद के कवि हैं। उनके गुरु शेख मोहम्मद गौस शतारी सूफी संप्रदाय के थे। इस संप्रदाय की एक पुस्तक गुल बाजारे अबरार में मंझन का विस्तृत उल्लेख है। एक अन्य पुस्तक अफसाना ए बादशाहन में भी मंझन का जिक्र है। ये सूचनाएं डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे ने अपनी पुस्तक सूफी काव्य विमर्श में दी है। फिर जायसी के बारे में यह दहाड़ती हुई चुप्पी क्यों है? ग्रियर्सन के कथन पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रतिष्ठित मुहर लगाई। उन्होंने अनुमान किया कि जायसी ने जायस के सैयद अशरफ से विधिवत दीक्षा ली और बाद में मानिकपुर के मुहिउद्दीन से भी कुछ ज्ञान लाभ किया। जायसी अपने समय में ही बड़े सिद्ध पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे और उनको सिद्ध योगी मानकर बहुत से लोग उनके शिष्य हुए। प्रोफेसर हसन अस्करी ने इसमें इतना जोड़ा कि जायसी के गुरु मोहदी मुहिउद्दीन नहीं बल्कि मीर सैयद मोहम्मद जौनपुरी हैं, जिन्हें महदवी मत का संस्थापक कहा गया। सैयद अशरफ जायस से हटकर कछौछा में स्थापित हो गए। बाद के लोगों ने इन्हीं अनुमानों का पिष्ट पेषण किया है, लेकिन जैसा हमने देखा कि ये सारे अनुमान न सिर्फ निराधार हैं बल्कि गहरे उतरकर जब हम जायसी के व्यक्तित्व पर उनके ही साक्ष्य द्वारा विचार करते हैं तो उनका व्यक्तित्व इन अनुमानों से अलग और एक सीमा तक विपरीत भी दिखता है। इस सारी बहस की आवश्यकता क्यों है? हमारा मूल उद्देश्य तो जायसी के काव्य पद्मावत की छानबीन करना है। इस बहस की आवश्यकता इसलिए है कि इस धारणा के कारण कि जायसी सूफी सिद्ध थे, पद्मावत की हमारी समझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तर्क कुछ इस तरह बन गया कि चूंकि जायसी सूफी सिद्ध थे अतः पद्मावत मूलतः सूफी काव्य है। परिणाम यह हुआ कि सबकी दृष्टि पद्मावत के केवल उन्हीं थोड़े से स्थलों पर केंद्रित हो गई जहां सीधे अथवा खींच तान कर भावनात्मक या सांप्रदायिक तसव्वुफ सिद्ध किया जा सकता था। चूंकि पद्मावत में ऐसे स्थल थोड़े हैं अतः एक व्यवहारिक परिणाम यह भी हुआ कि समूचा ग्रंथ आलोचकों, अध्यापकों, साहित्य प्रेमियों और लेखकों की दृष्टि से ओझल हो गया। वास्तविकता यह नहीं है कि जायसी का पद्मावत लोकप्रिय नहीं हुआ, वह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में लोकप्रिय हुआ। पद्मावत काव्य की शक्ति ही ऐसी थी कि एक बार सुन या पढ़ लेने पर पृष्ठ संख्या 26 भूलना कठिन था। फिर भी यदि जायसी की जिक्र अगर नहीं मिलता तो इस चुप्पी के कारण उस समय के सांप्रदायिक और राजनीतिक वातावरण में ही खोजने पड़ेंगे। ग्रियर्सन की मान्यताओं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रतिष्ठित मुहर लगाई। उन्होंने भी अनुमान किया कि जायसी ने सैयद अशरफ से बाकायदा दीक्षा ली, लेकिन आज इससे भी अधिक एक और खतरा उत्पन्न हो गया है। जब तक हिंदी साहित्य में सैद्धांतिक और मतवादी अध्यात्मवाद का जोर था तब तक अधूरा ही सही कुछ आकर्षण जायसी के लिए तसव्वुफ के माध्यम से वर्तमान था। अब जबकि तसव्वुफ के लिए हिंदी को छोड़ दें, उर्दू और फारसी साहित्य में भी कोई आकर्षण नहीं रह गया है। आधुनिक ईरानी और उर्दू शायरी में तो तसव्वुफ के विरुद्ध प्रतिक्रिया ही दिखती है। इस बात की प्रचुर संभावना है कि लोग पद्मावत की ओर इसी क्रम में दृष्टि डालना ही बंद कर दें कि यह सब सूफी मत का झमेला है और आज के लिए नितांत अप्रासंगिक है। इसलिए आवश्यक है कि हम अच्छी तरह उधेड़ बुन करके अपने को पूर्वाग्रह के जाल से मुक्त करें ताकि जायसी को समूचा उनके संपूर्ण सृजनात्मक कृतित्व के साथ देख सकें और एक समर्थ और श्रेष्ठ कवि का साक्षात्कार कर सकें। हमारी प्रतिबद्धता तसव्वुफ के प्रति नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता जायसी की कविता के प्रति है। आखिर इस सूफीवादी दृष्टि की जड़ में क्या है? शुक्ल जी के सामने तीन जबरदस्त अड़चने थी। एक तो पद्मावत और जायसी की अन्य कृतियों के आरंभ में गुरु वंदना थी, दूसरे उनके और ग्रियर्सन दोनों के पाठ में अनियुक्ति की वह प्रसिद्ध कुंजी थी जिसमें कहा गया था कि तन चित्तौड़ है, मन रत्न सेन है, तोता गुरु है आदि। तीसरे पद्मावत की काव्य शैली में प्रयुक्त प्रेम की पीर सौंदर्य वर्णन तथा घटना निरूपण में कहीं कहीं ऐसी युक्तियों का प्रयोग है जिसके कारण आध्यात्मिक अर्थों की झलकियां मिलती हैं। सूफी गुरुओं के बारे में हमने पहले भी कुछ उलझनों की चर्चा की है, आगे भी अन्य संदर्भों में इन पर विचार करने का अवसर आएगा। यहाँ हम एक पहलू पर विचार करेंगे जायसी ने कुछ मुर्शिदों और पीरों की वंदना की है। इस वंदना मात्र से हम क्या यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जायसी इन गुरुओं के संप्रदाय में दीक्षित थे, वे इन गुरुओं के सभी विचारों से सहमत थे। पृष्ठ संख्या 27। और यदि हमें इन गुरुओं के विचार ज्ञात हो जाएं, तो क्या हम जायसी के काव्य की व्याख्या इन विचारों के आधार पर कर सकते हैं? सच यह है कि ये तीनों निष्कर्ष भ्रामक होंगे। जायसी के साथ एक विशेषता है जो मौलाना दाऊद, कुतुबन, मंझन आदि के साथ नहीं है। इन कवियों ने एक गुरु की वंदना की है, अतः इन कवियों का संबंध अपने गुरुओं के साथ अधिक घना है, इतना अनुमान हम लगा सकते हैं। आखिरकार मध्य युग एक तरफ तलवारबाज सामंतों और आक्रांताओं का युग था, दूसरी तरफ बाबाओं का। जब आज इस 20वीं सदी के ढलते ढलते हर शहर में 150 बाबा और 2-1 भगवान घूमते दिखते हैं, तो मध्य युग में तो एक तिहाई आबादी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, बाबाओं की रही हो, इसमें क्या आश्चर्य है। सिद्धों की इस प्रचुरता में अगर कोई कवि सिर्फ एक को नमस्कार करे, तो श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ संप्रदाय संबंध हम कल्पित कर सकते हैं। लेकिन जायसी की सूची में एक नहीं, अनेक बाबा हैं, और ये बाबा भी किसी एक गद्दी की सूची में हो ऐसा नहीं है। दो घराने तो साफ ही दिखते हैं, एक में मोहम्मद महदी अल हदाद शेख बुरहान आते हैं, दूसरे में सैयद अशरफ शाह मुबारक वगैरह हैं। एक सैयद राजे अलग हैं जो किसी गद्दी में नहीं है। फिर सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी होने का दावा करने के बाद वैसे सूफी भी रह गए जैसे बाबा फरीदुद्दीन गजशंकर थे। महदीयत का तेवर ही जुझारू, कट्टर और सत्ता परक होता है। कहने को जायसी ने शेख बुरहान को अल हदाद का चेला कहा है। अगर बदायूनी का साक्ष्य सही है, तो अल हदाद और शेख बुरहान की भेंट कुल 3 दिन की थी, और वह भी तब जब शेख बुरहान खुद पीरी के मर्तबे तक पहुंच चुके थे। अगर मोहम्मद महदी और शेख बुरहान की तुलना करें, तो एक प्राणायाम की साधना छोड़कर दोनों बिल्कुल दो तरह के साधु दिखते हैं। मोहम्मद महदी लड़ाकू संगठन तैयार करते हैं, लंबे लंबे दौरे करते हैं, सत्ता से टकराते हैं, एक राज्य से भागकर दूसरे राज्य में शरण लेते हैं, भीड़ में सम्मोहनकारी भाषण देते हैं और हर प्रशासक के लिए दर्दे सर बन जाते हैं। इसके विपरीत शेख बुरहान ने अपने को एक छोटी अंधेरी कोठरी में बंद कर लिया है, बहुत कम लोगों से मिलते हैं, अल्लाह की आराधना में खाना पीना भी छोड़ दिया है, बोलना भी लगभग बंद कर दिया है, दुनिया से वीतराग हो गए हैं। एक ही अखाड़े के बाबाओं में भी मिजाज में, सामाजिक दृष्टि में, जीवन पद्धति में, साधना विधि में, सत्ता से संबंध में, देशी विदेशी मुसलमानों के मामले में कुछ गहरे उतरने पर काफ़ी भिन्नता दिखती है। जायसी के पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है, बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक, पृष्ठ संख्या 28, सांस्कृतिक समन्वय भी है। गुरुओं की समूची सूची से इसका मिजान बैठा पाना कठिन है। इस समस्या का एक ही हल दिखता है। इस लंबी सूची से यह निष्कर्ष निकलता है कि जायसी किसी गद्दी या सिलसिले या अखाड़े से बंधे हुए नहीं थे। जितने लोग उन्हें वंदनीय लगे या जिनकी उन्हें एक दो बातें अच्छी लगी, उन सबको उन्होंने पीर और मुर्शिद माना, सबको विनत भाव से नमस्कार किया, लेकिन अपने स्वाधीन चिंतन को बरकरार रखा। वे किसी संप्रदाय या सत्ता दल से जुड़े नहीं हैं। इस धारणा को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दूंगा। आखिरी कलाम में कयामत के आने और अल्लाह के फैसले का विशद वर्णन है। 900 हिजरी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों में कयामत के निकट होने की हवा बहुत तेजी से फैली। ऐसा विश्वास था कि इस्लाम के 1000 साल होते होते कयामत आने के लक्षण प्रकट होने लगेंगे, सृष्टि का अंत निकट दिखता था। उस समय के धार्मिक विश्वासों में एक प्रचंड विश्वास था कि कयामत के पहले लोगों के धार्मिक आचार विचार बिगड़ जाएंगे, अनैतिकता और कुफ्र का बोलबाला होगा, कुरान की लिखत विलुप्त हो जाएगी। तब एक बार फिर अल्लाह का हुक्म दुनिया पर लागू करने के लिए महदी का उदय होगा। महदी की धारणा मूलतः पुनरुत्थानवादी धारणा है। महदी का काम न सिर्फ शरीयत की रक्षा करना, बल्कि सारी दुनिया पर अपनी सत्ता स्थापित करना था। इस सामान्य विश्वास के चलते जगह जगह महदीयत का दावा करने वाले उठ खड़े हुए। जायसी का युग इस दृष्टि से तेज वैचारिक उथल पुथल, मूलगत अस्थिरता और उहापोह का युग है। जौनपुर के सैयद मोहम्मद भी ऐसे ही महदी थे जो अन्य महदियों से कुछ ज़्यादा लोकप्रिय हुए। इन महदियों की अखरावट और आखिरी कलाम सूची इतनी लंबी नहीं है। प्रति सुल्तानों और बादशाहों का शंकित होना स्वाभाविक था। सही सूफियों में हाफिज की एक उक्ति प्रसिद्ध हुआ करती थी, उमूरे मुमलिकते ख्वेश खुशवादा नंद, अर्थात राज कैसे चलाना चाहिए यह बादशाह ही ठीक जानते हैं। आशा यह था कि दरवेशों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन महदी तो अपने अस्तित्व से ही समाज शासन शरीयत सबका ठेकेदार होकर खड़ा होता था, इसलिए टकराहट भी होती थी। बदायूनी ने यह भी लिखा है कि जीवन के आखिरी क्षणों में सैयद मोहम्मद ने अपने महदियत के दावे को तिलांजलि दे दी थी। पृष्ठ संख्या 29। जायसी शेख बुरहान के जरिए सैयद मोहम्मद के महदवी मत के मानने वाले कहे जाते हैं। उन्होंने सैयद मोहम्मद को प्रणाम भी अर्पित किया है। आखिरी कलाम शायद जायसी ने तत्कालीन हवा के बहाव में कि कयामत का दिन करीब है लिखा होगा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कयामत की तस्वीर तो बिल्कुल कुरान और शरीयत के अनुसार है, परंतु महदी का जिक्र कहीं नहीं है। हवा में से कयामत की चर्चा तो जायसी ने ले ली, लेकिन महदी या महदियों के शोर को उन्होंने अनसुना कर दिया। आखिरी कलाम की कयामत वह भावनात्मक और वैचारिक धुरी है जिस पर हमारे पूर्ण ईमान और बेईमानियां चक्कर काटते हैं, कल या परसों घटित होने वाले इतिहास नहीं। संक्षेप में गुरुओं की वंदना से यह नतीजा निकालना कि जायसी इस या उस संप्रदाय इस या उस मतवाद में बंधे हुए थे समीचीन नहीं होगा और जायसी की अपनी दृष्टि को समझने में हमारी मदद नहीं करेगा। जायसी में अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं जो गद्दियों और सिलसिलों की मठी या सरकारी नीतियों से अलग हैं। इस अर्थ में जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। अब हम इसका भी अनुमान लगा सकते हैं कि जायसी का उल्लेख क्यों किसी मठ या इतिहास में नहीं हुआ। आज भी संप्रदाय बनाने वाली हिंदी आलोचना में यह प्रवृत्ति दिखती है कि अपने संप्रदाय के बाहर जो लेखक पढ़ते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। जायसी के युग में तो संप्रदायों गद्दियों सरकारी अखबार नवीसों का बोलबाला था, इस परिधि के बाहर जीना मुश्किल था। तब जायसी जैसे फुटैल कवि को कौन पूछता। शुक्ल जी के सामने दूसरी अड़चन तन चितौर मन राजा कीन्हा वाली कुंजी थी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने अपने पाठ शोध में इस समूचे कड़वक को प्रक्षिप्त बतलाया। अब सभी लोगों ने मान लिया है कि अब अंश प्रक्षिप्त है, इसलिए पद्मावत की समूची कथा को खादम खा एक आध्यात्मिक रूपक की तरह आख्यात किया ही जाए, ऐसी कोई विवशता नहीं रह गई। लेकिन जब तक यह अंश चलन में रहा, लोगों में आध्यात्मिक व्याख्या की प्रवृत्ति बद्ध मूल हो गई। रूपक निर्वाह पूरी कथा पर घटित नहीं होता, इतना तो सामान्य अवलोकन से भी दिखता है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो जायसी को सतर्क कवि मानकर पूरी कथा को इस तरह पढ़ा जाए कि समूचे कृतित्व की एकता खंडित न हो और यत्र तत्र बिखरे हुए तसव्वुफ की झलकियों को अंशी न मानकर अंश ही माना जाए, या यह समझा जाए कि जायसी का मूल कथ्य सूफीवाद है लेकिन कविता लिखते समय वे बह गए और जो करने चले थे न कर सके, रूपक उनसे निभ न सका। श्री परशुराम पृष्ठ संख्या 30। चतुर्वेदी ने, जो सूफी साहित्य के प्रतिष्ठित आलोचक हैं, 1951 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक सूफी काव्य संग्रह में दूसरे तर्क को अंतिम परिणति तक पहुंचते हुए कहा, जैसी कि यह रचना एक कथा रूपक है जिसका अप्रस्तुत बातों के साथ अक्षरशः मेल खाना संभव नहीं है। जायसी ऐसा करने में सफल भी नहीं कहे जा सकते, किंतु इस प्रकार की त्रुटि उस मूल आदर्श का ही परिणाम है जिसके अनुसार ये सूफी कवि इस ओर अग्रसर होते हैं। पहले उन्होंने पद्मावत को कथा रूपक कहा, फिर कहा कि कथा रूपक में कृति बैठती नहीं। नतीजा निकला कि कृतिकार असफल हैं। इस तर्क पद्धति को हम एक प्रकार का निष्पत्तिवाद कह सकते हैं, या भ्रामक निष्पत्तिवाद हिंदी आलोचना में अन्यत्र भी दिखता है। उदाहरण के लिए हम कहें कि नई कविता में अस्तित्ववाद है। अब यदि किसी कवि में अस्तित्ववाद से अलग उन्मेष दिखाई पड़े तो दूसरा तर्क दें कि कवि में अंतर्विरोध है और उसकी कविता असफल है। जायसी के विषय में सूफी निष्पत्तिवाद की आदत मुश्किल से छूटती दिखती है। 1951 ईस्वी में ही डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का वैज्ञानिक संस्करण निकला। इसमें उन्होंने कथा रूपक की कुंजी वाले कड़वक को प्रक्षिप्त ठहराया। अपनी भूमिका में उन्होंने इस संबंध में लिखा, इस छंद को प्रामाणिक मान लेने के कारण जायसी के रूपक निर्वाह के विषय में शुक्ल जी ने और उनके पीछे के समस्त आलोचकों ने कितना बड़ा वितंडावाद खड़ा कर दिया है। वस्तुतः पद्मावत के प्रति आज के लेखकों और बुद्धिवादी पाठकों के परांगमुख होने का एक बड़ा कारण यह अफवाह है कि पद्मावत मूलतः कथा रूपक है, अन्योक्ति है, अलेगरी है। काव्य विधा के रूप में अलेगरी मध्ययुगीन और पुराण पंथी चीज हो गई है, अतः पद्मावत का आकर्षण नहीं रह गया। यह बहुत जरूरी है कि जोर देकर इस अफवाह को नष्ट कर दिया जाए। कथा रूपक या अन्योक्ति के प्रश्न को अधिक विवेचित करना आवश्यक नहीं है, किंतु इस क्षेपक के संदर्भ में कृति और उसके उपयोग या दुरुपयोग के एक अन्य पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रसिद्ध कृतियों में लोग क्षेपक क्यों डालते हैं? यहाँ केवल पाठांतर का सवाल नहीं है, जो अज्ञान या लिपि की दुर्बलता के कारण अधिकतर उत्पन्न होता है। क्षेपक तो कृति में जानबूझकर किया हुआ हस्तक्षेप है। आज के छापे खाने के युग में क्षेपकों का डालना उतना आसान नहीं रह गया।